पितृ यज्ञ के बारे में जैसा कि हमें अनुज्ञात हुआ,
कुर्याद अहरहः श्राद्धान मनाद्येन्नोदकेन वा पयो मूल फलैर्वापि पितृभ्यः प्रीतिमावहन।
पितरों का आवाहन करके उनको जल इत्यादि देना ही पितृयज्ञ कहलाता है। इससे श्राद्ध और तर्पण विषयक बातों का स्पष्ट प्रकाश डालने के लिए तथा मात्रक श्राद्ध और तर्पण संबंधी भ्रांतियों को दूर करने के लिए यहां पर विद्वान विचार करते हैं कि पितृयज्ञ अर्थात जिनमें जो देव विद्वान ऋषि जो पढ़ने पढ़ाने हारे पितर माता पितादि वृद्ध ज्ञानी और परम योगियों की सेवा करनी होती है। इस विषय पर विस्तृत विवेचन करते हुए विद्वान कहते हैं कि पितृयज्ञ दो प्रकार के होते हैं। एक तो तर्पण, पितृयज्ञ के दो भेद होते हैं, पहला तर्पण और दूसरा श्राद्ध। येन कर्मणा विदुषो देवान ऋषीन पितृंश तर्पयन्त सुखान्ति तर्पणम्। अर्थात जिस कर्म से विद्वान रूप देव ऋषि और पितरों को सुखयुक्त करते हैं उसे तर्पण कहते हैं।
यत्तेषां श्रद्धया सेवनम क्रियते तत्श्राद्ध्यम्।
यत्तेषां श्रद्धया सेवनम क्रियते अर्थात जो इन लोगों का श्रद्धा से सेवन करता है वह श्राद्ध कहता है। यह तर्पण आदि कर्म विद्यमान जो प्रत्यक्ष है उन्हीं में घटकता है, मृतकों में नहीं, क्योंकि उनकी प्राप्ति और प्रत्यक्ष होना दुर्लभ है। इसी से उनकी सेवा भी किसी प्रकार से नहीं हो सकती, और जो उनका नाम लेकर दे रहे हैं तो उनको पदार्थ नहीं मिल सकता। इसलिए मृतकों को सुख पहुंचाना सर्वथा असंभव है। तर्पण आदि कर्म में सत्कार करने योग्य तीन हैं, देव ऋषि और पितर। पितर से अभिप्राय करते हुए विद्वान कहते हैं
कि पान्ति पालयन्ति रक्षन्ति अन्न विद्या शिक्षा आदिदानैः ते पितरः।
जो अन्य विद्या सुशिक्षा आदि से पालन पोषण और रक्षण करते हैं वे पितर कहलाते हैं। इसमें ब्राह्मणों के प्रमाण जो है द्रष्टव्य है। यहां पर
देवा वायेते पितरः स्विष्ट कृतो वै पितरः।
अर्थात सुख सुविधाओं द्वारा पालन पोषण करने वाले और हित संपादन करने वाले विद्वान व्यक्ति पितर कहलाते हैं।
मर्त्याह पितरः शतपथ ब्राह्मण।
पितर ही मनुष्य ही पितर है। मर्त्याह पितरः मनुष्य ही पितर अर्थात मृत नहीं। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि मृत पितरों की मान्यता मात्र कल्पना और भ्रांति है। माता पिता पितामह आचार्य ही पितर कहलाते हैं। मनुस्मृति में स्थान स्थान पर इन्हीं व्यक्तियों को पितर कहा गया है, उनके ऋण उऋण होने से के लिए कहा गया है।
महर्षि पितृदेवाणाम गत्वा नुण्यम यथा विधि।
यह जीवितों के साथ भी ही संभव हो सकता है। मनुस्मृति के अन्य प्रमाणों का द्रष्टव्य देते हुए यहां पर विद्वान कहते हैं
अध्यापयामाश पितृन शिशुराभिरंगशः कवि पुत्रकायति होवाच ज्ञानेन परिग्रहुतान पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गति पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षु सनातनम्।
ये सब पितरों के लिए पितरों का प्रमाण देती हैं।
दाराधीनस्ततः स्वर्गः पितॄणां मनश्चः
और ऋषयः पितरो देवा भूतान्यतिथयस्तथा आशायते कुटुम्बिभ्यस्तेभ्यः कार्यविजायिता। अर्थात
मनु ने चार इस चारवें अध्याय में 30-31 श्लोक में जीवित धार्मिक वेदवित ब्राह्मणों को ही हव्य कव्य देने का विधान बताया है। वे श्लोक मनु को इस मान्यता के को सिद्ध करते हैं कि हव्य कव्य जीवित व्यक्तियों को ही दिए जाते, यही श्राद्ध है। हव्य कव्य आदि श्राद्ध संबंधी बातों का मृतक पितृ श्राद्ध से कोई संबंध नहीं। पितरों में वेद का प्रमाण, उरजम बहतेरमृतम घृतम पयः कीलालम परिष्टतम स्वध्याय तर्पयत इति मे पितृन, जिसका अर्थ है पिता व स्वामी अपने पौत्र स्त्री नौकरों के को सब दिन के लिए आज्ञा देकर कहें, जो मेरे पिता पितामह आदि मातामह आदि तथा आचार्यों को इनसे भिन्न भी विद्वान लोग अवस्था अथवा ज्ञान से बुद्ध मान्य करने योग्य हो, उन सभी आत्माओं को यथा योग्य सेवा से प्रसन्न किया करो। सेवा करने के पदार्थ ये हैं, ऊर्जम बहंती जो उत्तम उत्तम जल है, अनेक विधि रस घी दूध, अनेक संस्कारों से सिद्ध किए गए रोग नाश करने वाले उत्तम उत्तम अन्न से सदा सेवा करते रहो। स्वाध्याय, हे पूर्वोक्त पितृ लोगों, तुम लोग हमारे अमृत रूप पदार्थों के भोगों के साथ सदा सुखी रहो। यहां पर कुछ ब्राह्मण इस पर विचार करते हुए जिन पितृ संज्ञा जिनकी है उनको यहां पर प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, एक तो सोमदत्त, दूसरे अग्निवास्ता उनके नाम बताते हुए, तीसरे में बहिर्षदः, चौथा सोमपाह, पांचवा हविर्भुजः, छठा अज्यपाह, सातवां सुकालिनः, आठवां यमराजाः, नौवां पितृ पितामह पितृ प्रपितामह, दसवां मातृ पितामह मही प्रमिता पितामह महियः, ग्यारहवां सगोत्रा और बारहवां आचार्यादि संबंधिनः। सोम सदा की व्याख्या करते हुए विद्वान कहते हैं, सोमेश्वरे सोम योगे वा सीदन्ति ये सोम गुणाश्चते सोम सदा, जो ईश्वर और सोम यज्ञ में निपुण और शांति आदि गुण सहित हैं वे सोमसद कहलाते हैं। इस प्रकार से सबकी व्याख्या करते हुए बारहों की व्याख्या करते हैं। आगे देव के से अभिप्राय बताते हुए भगवान कहते हैं, यहां पर विद्वान अर्थ निकालते हैं, दिव क्रीडा विजगी थाव्य उहारद्युति सुस्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, दिवि धातु से पंचाद्यन से यव प्रत्यय तथा दिव मर्दन स्वरादि तथा दिव परिकूजने धातु से अच प्रत्यय के योग से देव शब्द निष्पन्न होता है। देव जड़ और चेतन दो प्रकार के होते हैं। इस श्लोक में देव शब्द से चेतन देव अभीष्ट है। शतपथ ब्राह्मण में आता, द्वयम् वा इदम् न तृतीयमस्त्य सत्यम चैवानृतम च सत्यमेव देवा अनृतम मनुष्याः इदमहत् मन्रितात मन्यमनुपै दैवैति तन्मनुष्येभ्यस् देवानुपैति। अर्थात दो लक्षणों से मनुष्य की संज्ञाएं होती हैं, देव और मनुष्य। वहां सत्य और झूठ दो कारण है, जो झूठ बोलने सत्य मानने, जो सत्य बोलने सत्य मानने और सत्य कर्म करने वाले हैं वे देव हैं, और जो झूठ मानने और झूठ कर्म करने वाले वे मनुष्य कहलाते हैं। जो झूठ से अलग होकर सत्य को प्राप्त होवे वे देव जाति में गिने जाते हैं। विद्वांसो हि देवा ये ब्राह्मण शुश्रुवांसो नू चा नास्ते मनुष्य देवा सत्य संहिता वै देवा, इस प्रकार के प्रमाण हमारे ब्राह्मणों में मिलते हैं। एतरे ब्राह्मण कहता है, सत्य संहिता वै देवा। निरुक्ति कहती है, देवो दानवाद्वा दीपन्नाद्वा द्वे दोतनाद्वा द्वितिस्थानो भवति इति वा यो देवः स देवता। अर्थात दान देने से, प्रकाश करने से, प्रकाशित होने से, दुस्थापनीय होने से देव कहलाते। देव को ही देवता कहा जाता है।
इस प्रकार विद्याओं से प्रकाशित और विद्याओं का दान करने वाले दिव्य गुण एवं उत्तम आचरण वाले विद्वानों को देव कहा जाता है। मनुस्मृति में ऐसे ही विद्वानों को देव कहा गया है। अगले श्लोक में भगवान पितृयज्ञ और बलि वैश्वदेव में किसको जिमाएं इसका विधान करते हुए कहते हैं, एकमप्याशयेद् विप्रम् पित्रर्थे पांचयज्ञ के न चैवात्रशयेत् किंचत् वैश्वदेवं प्रतिद्विजम्। पांच याग के पितृर्थे प्रतिदिन के पांच यज्ञों के अंतर्गत आने वाले पितृयज्ञ निमित्त तो चाहे एक भी विद्वान ब्राह्मण को जिमा दे, भोजन खिला दे, किंतु बलि वैश्वदेव यज्ञ के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन न करावे, किंचित द्विजम न आशयेत्। क्योंकि यहां पर विद्वान प्रक्षिप्त इस श्लोक को कहते हुए कहते हैं इसमें अंतर्विरोध है। 42वें श्लोक में दैनिक रूप से अन्न फल फूल आदि पितरों के लिए श्राद्ध का करने का कथन है, जिसका अभिप्राय माता पिता आदि वयोवृद्धों की सेवा शुश्रूषा करना है। मनु ने वयोवृद्धों को ही पितर कहा है। पितृन शब्द के प्रयोग को इस श्लोक में न तो ब्राह्मणों की जिमाने की चर्चा ही है और न ही ब्राह्मणों को भोजन कराने का कोई प्रसंग। यहां पर 43वें श्लोक में भगवान आगे कहेंगे, ब्राह्मण को भोजन कराने का कथन कहना मृतक साध्य की मान्यता पर आधारित है। यह मान्यता मनु विरुद्ध है। पितरों के लिए एक ब्राह्मण को भोजन कराने का कथन मृतक साध्य की मान्यता पर आधारित है। यह मान्यता मनु विरुद्ध है। इस प्रकार वैश्वदेव यज्ञ में ब्राह्मण को भोजन कराने का निषेध करना भी व्यवस्था से तालमेल नहीं खाता, क्योंकि 84 से 92 श्लोक तक वैश्वदेव यज्ञ के विधान में जिवाने या जिवाने का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार से अंतर विरोधों के आधार पर यह श्लोक प्रक्षिप्त माने जाते हैं। 84वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बलि वैश्वदेव का यज्ञ का विधान बताते हुए, वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गृहेशाग्नो विधिपूर्वकम् आभ्याह कुरवाद देवताभ्यो ब्रह्मणो होममन्वहम्। अर्थात ब्राह्मणः ब्रह्म एवं द्विज व्यक्ति गृहे अग्नौ पाकशाला की अग्नि में विधिपूर्वक सिद्धस्य वैश्वदेवस्य सिद्ध तैयार किए हुए बलि वैश्वदेव के यज्ञ के भाग को भोजन का अन्वहम प्रतिदिन आभ्या देवताभ्या होमम कुर्यात्। इन देवताओं ईश्वरीय दिव्य गुणों के चिंतन पूर्वक आहुति देकर हवन करे। चौथा वैश्वदेव अर्थात जब भोजन सिद्ध हो तब जो कुछ भोजनार्थ बने उसमें से खट्टा छोड़ करके घृत मिष्ठान युक्त अन्न को चूल्हे में अग्नि से अलग घर निम्नलिखित मंत्रों से विनय पूर्वक होम करना चाहिए। यहां पर इस श्लोक से ऐसा स्पष्ट होता है कि यज्ञ में लवणान्न की आहुति नहीं दी जाती। अगले श्लोक में 85वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अग्ने शोमस्य चैवादौ तूयोश्चैव समस्तयो विश्वोभ्ययश्चैव देवेभ्यो धनवंतरायैव च। आदौ प्रथम अग्नेः सोमस्यैव अर्थात अग्नि पूज्य परमेश्वर और सोम सब पदार्थों को उत्पन्न करने और पुष्ट करके सुख देने वाले सोम रूप महात्मदेव के लिए ओम अग्नि स्वाहा इत प्रकार मंत्र से आहुति देनी चाहिए। ओम अग्नि स्वाहा। तथा तयोह समस्तयोह उन्हीं देवों के सर्वत्र व्याप्त रूपों के लिए संयुक्त रूप में ओम अग्नि शोमाभ्याम स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अग्नि जो प्राण अर्थात सब प्राणियों के जीवन का हेतु है और सोम जो अपना अर्थात दुख नाश करने का हेतु है और विश्वेभ्या देवेभ्या और विश्व देवो संसार को प्रकाशित करने या संचालित करने वाले ईश्वरी गुणों के लिए ओम विश्वेभ्या देवेभ्या स्वाहा इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा तथा धन्वंतरये च धन्वंतरि जन्म मरण आदि के अवसर पर आने वाले रोगों का नाश करने के लिए ईश्वर के गुण के लिए ओम धन्वंतरये स्वाहा इस मंत्र से बलि वैश्वदेव यज्ञ में आहुति दे हैं। कुहुवै चैवानुमत्यै च प्रजापतयैव च सहद्यावा पृथिव्योश्च तथा स्विष्टिकृतेन ततः। और कुहुवै अमावस्या की अधिष्ठात्री ईश्वरीय शक्ति अर्थात कृष्ण पक्ष को रचने वाली परमेश्वर की शक्ति के लिए ओम कुहुवै स्वाहा इस मंत्र से आहुति देनी चाहिए। अनुमत्यै पूर्णिमा की अधिष्ठात्री ईश्वरीय शक्ति अर्थात शुक्ल पक्ष का निर्माण करने वाली परमेश्वर की शक्ति के लिए परमेश्वर की चित शक्ति के लिए ओम अनुमत्यै स्वाहा कहकर आहुति देनी चाहिए। प्रजापतयैव ओम प्रजापतये कहकर आहुति देनी चाहिए ओम प्रजापतये स्वाहा। सहद्यावा पृथिव्यो ईश्वर द्वारा उत्पादित द्युलोक और पृथ्वी लोक की पुष्टि के लिए ओम सहद्यावा पृथिभ्याम स्वाहा तथा अंततः और अंत में स्विष्ट कृते अभीष्ट सुख को देने वाले ईश्वर के गुण के लिए ओम स्विष्ट कृते स्वाहा मंत्र से आहुति देना चाहिए। एवं सम्यक धविर्हुत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम् इंद्रांतका पतिन्दुभ्य सानुभ्यो बलिम हरे। इस प्रकार सम्यक हवि हुत्वा अच्छी प्रकार अच्छी तरह उपर्युक्त आहुतियां देकर सब दिशाओं में घूमकर सानुजेभ्या इंद्र अंतक अश्वपति इंदुभ्या परमेश्वर के सहचारी गुणों इंद्र सर्व प्रकार के ईश्वर से युक्त होना अंतक यम अर्थात न्यायकारी होना या प्राणियों के जन्म मरण का निमंत्रण रखने वाले वाला गुण अपति वरुण अर्थात सबके द्वारा वर्णीय सबसे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा इंद्र सोम अर्थात आनंददायक होना इनके लिए स्मरण पूर्वक ओम सानु गान इंद्राय नमः पूर्व दिशा में ओम सानुगाय यमाय नमः दक्षिण दिशा में ओम सानुगाय वरुणाय नमः और पश्चिम दिशा में ओम सानुगाय सोमाय नमः और उत्तर दिशा में बलिम हरेत भोजन के भाग अर्थात बलि को रखे। 88वें श्लोक में मरुद्भ्य एति तुद्वारे क्षिपेदत्स्वभ्यदप्यैतिप्य वनस्पतिभ्यैतेव मूषलो लूखले हरेत। मरुद्यभ्य इति तुद्वारि क्षिपेद स्व भयत्यपि मरुद्भ्या इति तो द्वारि मरुत जीवन के संचालक प्राण रूप परमात्मा के स्मरण रूप में ओम मरुद्भ्यो नमः इति इस मंत्र से द्वार पर अद्भ्या इति अपि अप्सु सर्वत्र व्याप्त और संपूर्ण जगत के आश्रय रूप परमात्मा को स्मरण करते ओम अदभ्यो नमः जल में छिपे बलि भाग को डाले इस प्रकार वनस्पतियों के समीप मूशल और उखल के समीप बलि रखे। उक्षेर शके श्रेय कुर्यात् भद्रकाल्यै च पादप ब्रह्मा वास्तुस्पतिभ्याम तो वास्तु मध्ये बलिम हरेत। सबके द्वारा सेव्य परमात्मा की सेवा से राजश्री अथवा लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए ईशान कोण की और परमात्मा की कल्याणकारी शक्ति प्राप्ति के लिए पृष्ठभाग अर्थात नैऋत्य कोण की और बलि रखे और ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए वेद विद्या के दाता परमात्मा के लिए, वास्तोस्पति ग्रह संबंधी पदार्थों के दाता ईश्वर के लिए घर के मध्य भाग में बलि रखे।
विश्वे देवभ्यैश्चैव देवो बलिमाकाशोपे उपक्षिपेत दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नक्तम चारिभ्येव च विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो विश्वेभ्यः देवेभ्यः।
संसार के साधक गुणों की प्राप्ति के लिए संसार के संचालक परमात्मा या विद्वानों के दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए आकाश की और या घर के ऊपर बलि भाग रखे। दिन में वितरण करने के लिए वाले प्राणियों के लिए और रात में विचरण करने वाले प्राणियों के लिए बलि रखे।
पृष्ठवास्तुन्य कुरवेते बलिम सात वर्तम भूत वये पुत्रभ्यो बलिशेषम तो सर्वदक्षिण तो हरेत।
सब प्राणियों में व्याप्त तथा आश्रय रूप परमात्मा की सत्ता का स्मरण करने के लिए घर में पृष्ठ भाग में बलि रखे। शेष बलि को माता पिता आचार्य अतिथि भ्रत आदिकों को सम्मान पूर्वक भोजन कराने की भावना को स्मरण करने के लिए घर के दक्षिण भाग में रखे।
सुराम च पतितानाम च स्वपचाम पापरोगिणाम वायशानाम क्रमीणाम च सनैकैर्निवर्पदे पेद भुवि।
और कुत्ता पतित चंडाल पापरोगी काक और क्रमी इन छह नामों के छह भाग पृथ्वी पर रखे। इस प्रकार कहते हुए वर्णन करते हुए भगवान बलि रखने की उत्तम विधियों के बारे में 93वें श्लोक में कहते हुए कहते हैं,
एवं यः सर्वभूतानि ब्राह्मणो नित्यमर्चति सगक्षति परमं स्थानं तेजो मूर्ति पथर्जुना।
जो ब्राह्मण उपर्युक्त प्रकार से प्रतिदिन सब प्राणियों की पूजा करता है तेजस्वी बनकर सीधे सरल मार्ग से उत्तम स्थान को अर्थात मुक्ति को प्राप्त करता है। अतिथि यज्ञ का विधान बताते हुए भगवान 94वें श्लोक में कहते हैं,
बलि वैश्वदेव यज्ञ च कृत्वद् बलिकमैर्वर्थितेयम् पूर्वमाशयेत भिक्षाम च भिक्षवे दद्यात् दुधिवद् ब्रह्मचारिणी।
अर्थात बलि वैश्वदेव यज्ञ करके पहले अतिथि को भोजन खिलाए, भिक्षा के लिए आए हुए ब्रह्मचारी के लिए विधिपूर्वक भिक्षा दे। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं,
यत् पुण्य फलमाप्नोति गाम दत्त्वा विधिवत् गुरु तत् पुण्य फलमाप्नोति भिक्षाम दत्त्वा द्विजो गृही।
गुरु के लिए विधि अनुसार गौ देने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है उसी पुण्य रूप फल को गृहस्थ द्विज भिक्षा देकर प्राप्त करता है।
भिक्षाम्युद पात्रम वा सत्कृत्य विधिपूर्वकम वेद तत्वार्थ विदुषे ब्रह्मणायोपपादयेत।
गृहस्थ व्यक्ति विधि के अनुसार सत्कार करके वेद के सिद्धांत और अर्थ को जानने वाले ब्राह्मण के लिए भिक्षा और जलपात्र को समर्पित करे।
नश्यन्ति हव्यकव्यानि नराणाम अविजानताम भस्मी भूतेषु विप्रेषु मोहादत्तानि दातृभिः।
दाता व्यक्तियों द्वारा जिसका ब्राह्मणपन नष्ट हो गया है ऐसे ब्राह्मणों को मोह अज्ञान मोहवश दिए गए होम आदि द्वारा देवताओं को दिए गए दान पितरों को दिए गए पदार्थों का दान ऐसे अज्ञानी लोगों के फल निष्फल हो जाते हैं।
विद्या तपः समद्धेषु हुतं विप्रमुखाग्निषु निस्तारयति दुर्गाश्च महतश्चैक किल्विषात्।
विद्या तपः समद्धेषु विद्या और तपस्या से समृद्ध विद्वानों की मुख रूपी अग्नि में आहुत के समान दिया गया दान महान क्लेश और पाप महान पाप से निश्चित करता है। 99वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
संता संप्राप्ताय त्वथितये प्रदस दासनोदके अग्नम चैव यथाशक्ति सत्कृत्य विधिपूर्वकम्।
और आए हुए अतिथि के लिए व्यवहारोचित विधि के अनुसार सत्कार करके शक्ति के अनुसार आसन और जल तथा अन्न भी प्रदान करें। सौवें श्लोक में भगवान कहते हैं,
शिलानुपयुक्षतो नित्यम पंचाग्नीनपि ज्विहुवतः सर्वं सुकृतमादत्ते ब्राह्मणो नरचितो वशन।
शिलाएं चुगकर जीविका चलाते हुए प्रतिदिन 5 महायज्ञों को करते हुए भी उनके घर में यदि कोई ब्राह्मण अतिथि बिना सत्कार किए रह जाता है तो सारे पुण्य हर ले जाता है। 101वें श्लोक में भगवान सज्जनों के घर में सत्कार्यार्थ सदा उपलब्ध वस्तुओं के बारे में कहते हैं,
त्रणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सूनृता एतान्यपि शतां गेहि नोक्षिद्यन्ते कदाचन।
बैठने के लिए आसन, सोने के लिए स्थान, पानी और सत्कार युक्त मीठी वाणी, सत्कार करने के ये बातें वस्तुएं तो श्रेष्ठ सभ्य व्यक्तियों के घर में कभी नष्ट नहीं होती, अर्थात श्रेष्ठ सभ्य व्यक्ति इनके द्वारा अवश्य ही सत्कार करते हैं। अतिथि का लक्षण बताते भगवान कहते हैं, एक रात्रम तो निवसन नतिथिर ब्राह्मण स्मृत अनित्यम स्थितो यस्मात् तस्माद् अतिथि रुच्यते।
विद्वान व्यक्ति जो एक ही रात्र तक पराए घर में रहे तो उसे अतिथि कहा जाता है, क्योंकि जिस कारण से वे नित्य नहीं ठहरता अथवा जिनका आना निश्चित अनिश्चित होता है इसी कारण से वे अतिथि कहलाते हैं।
अतिथि कौन नहीं होते, नैक ग्रामी डमतिथिम विप्रम सागंतिकम कथा उपस्थितम गृहे विद्याद् भार्या यत्राग्नयोपिवा। जिसके घर में पत्नी हो और पंच यज्ञों की अग्नि जहां प्रज्वलित रहती हो अथवा पाकाग्नि प्रज्वलित होती हो, ऐसे एक गांव में रहने वाला तथा मित्र विद्वान यदि घर में आए तो उसे अतिथि के रूप में न समझें। दूसरों यहां खाने की भावना रखने से पाप होता है, ऐसा बताते हुए भगवान कहते हैं,
उपाशते या गृहस्था परपाकम बुद्धया तेन ते प्रेत्य पशुताम ब्रजन्तन्नादिदायिनाम।
यदि गृहस्थ हो के पराए घर में भोजनादि की इच्छा करते हैं तो वे बुद्धिहीन गृहस्थ अन्न से प्रतिग्रह रूप पाप करके जन्मांतर में अन्नादि के दाताओं के पशु बनते हैं, क्योंकि अन्न से अन्न आदि का ग्रहण करना अतिथियों का काम नहीं, गृहस्थों का काम नहीं। 105वें श्लोक में घर अतिथि को न लौटाएं इस बारे में भगवान कहते हैं,
अप्रेणोद्योतिथि शायम सूर्योढ़ो ग्रहमेधिना काली प्राप्तस्त्वस् काली वा नास्यानस्नन गृहे भवेत्।
गृहस्थ को चाहिए कि सायंकाल सूर्य अस्त होते देख आए हुए अतिथि को वापस न लौटाए, चाहे समय पर आए अथवा असमय पर। इस गृहस्थी के घर में कोई अतिथि बिना भोजन के बिना न रहे। अतिथि पूजन सुख आयु और यशोदायक होता है, ऐसा बताते हुए भगवान कहते हैं,
नवै स्वयं तदश्नीयाद अतिथिन यन्न भोजयेत् धन्यम यशस्यम आयुष्यम स्वर्गम वा अतिथि पूजनम।
जिस पदार्थ को अतिथि को नहीं खिलावे उसे गृहस्थी स्वयं भी न खावे। अभिप्राय यह है कि जैसा स्वयं अन्न भोजन करे वैसा ही अतिथि को भी दे। अतिथि का सत्कार करना सौभाग्य यश और आयु और सुख को बढ़ाने वाला है। 107वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
आसनावस्ततौ शय्या मनुब्रज्यामुपाशनम उत्तमेषु उत्तमं कुर्यात् दीनेहीनं समीसमम।
जब गृहस्थ के समीप अतिथि आवे तब आसन निवास शय्या पश्चात गमन और समीप में बैठना आदि सत्कार वैसा का वैसा अर्थात उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम और निकृष्ट का निकृष्ट करे। ऐसा न हो कि कभी न समझे। दोबारा भोजन पकाने पर बलि यज्ञ नहीं। कहते हैं
वैश्वदेवे तुनिरवत्तो यदन्योथिथिरा ब्रजेत तस्याप्यंतम यथाशक्तिम प्रददान्यम बलिम हरेत।
वैश्यदेव यज्ञ के समाप्त होने पर अर्थात भोजन बनने उनकी यज्ञ में आहुतियां दे देने के पश्चात भी यदि और कोई अतिथि आ जाए तो उसको भी यथाशक्ति भोजन कराए। दोबारा भोजन बनाने के बाद बलि भाग नहीं निकाले। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं
न भोजनार्थ स्वे विप्र कुलगोत्रे निवेदयेत भोजनार्थ हिते स्वस्नन वांताशेत्युच्यते बुधै।
द्विज अच्छा भोजन पाने के लिए अपने कुल और गोत्र की दुहाई न दे, अर्थात अपने बड़े कुल या प्रतिष्ठित वंश की प्रशंसा करके अच्छा भोजन पाने की प्रवृत्ति प्रकट न करे, क्योंकि भोजन पाने के लिए उन कुल गोत्रों की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति विद्वानों द्वारा उगल कर खाने वाला ऐसे निंदित विशेषण से संबोधित किया जाता है। वांताशी इति उच्यते। 110वें श्लोक में भगवान कहते हैं
न ब्राह्मण स्वतथिर्ग्रहे राजन्यः उच्यते वैश्य शूद्रो शखा चैव ज्ञातवे गुररेव च।
ब्राह्मण के घर पर आए हुए क्षत्रिय वैश्य और शूद्र मित्र तथा रिश्ते नातेदार और गुरु भी अतिथि नहीं कहलाते।
यदि त्वथिर धर्मेण क्षत्रियो ग्रहमा व्रजेत भुक्त वस्तु च विप्रेषु कामं तमपि भोजयेत।
यदि अतिथि के रूप में क्षत्रिय भी घर आ जाए तो ब्राह्मण अतिथियों के भोजन कर लेने पर उसको इच्छा अनुसार भोजन करा देवे।
वैश्य शूद्राभिप्रातो कुटुंबेति धर्मिणो भोजयेत् सह भ्रत्यैस्ता वानरेन्सं प्रयोजयन्।
परिवार अर्थात घर पर वैश्य और शूद्र भी अतिथि के रूप में आ जाए तो उन दोनों वर्ण वालों को कृपा भावना रखता हुआ सेवकों के साथ भोजन करा दे। अतिथियों को से भिन्न व्यक्तियों को भोजन, इसके बारे में भगवान मनु कहते हैं
इतरानपि सख्यादीन संप्रीत्याग्रहमागमर्तान् सत्कृतान्यम यथाशक्ति भोजे सह भार्यया।
प्रीतिपूर्वक पत्नी के साथ घर में आए हुए अन्य मित्र आदि को भी सत्कार पूर्वक शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए।
सुवासिरी कुमारेश रोगिणो गर्भिणी स्त्रिय अतिथिभ्यो ग्रहीवैतान् भोजयेद् अविचारयन्।
नवविवाहिता अल्पवयस्क कन्याओं, रोगियों को, गर्भवती स्त्रियों को अतिथियों से पहले ही बिना किसी संदेह के अर्थात बड़े छोटे को पहले पीछे भोजन कराने का विचार किए बिना भोजन खिला देना चाहिए।
अदत्वा तुभ्यदे एतेभ्यः पूर्वं भुङ्क्ते विचक्षणः सभुञ्जानो न जानाति स्वग्रधैर्जग्धिमात्मनः।
जो मूर्ख गृहस्थ इन्हें भोजन न देकर पहले स्वयं खा लेता है, अपने को कुत्ते और गीध द्वारा खाए जाने को नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति को मरने पर कुत्ते गीध खाते हैं। 116वें श्लोक में भगवान कहते हैं
भोक्तवस्तस्थ विप्रेषु स्वेषु भृत्येषु चैव हि भुञ्जयाताम ततः पश्चात अवशिष्टम तु दंपति।
विद्वान अतिथियों के द्वारा भोजन कर लेने पर और अपने सेवकों आदि के खा लेने पर उसके बाद शेष बचे भोजन को पति पत्नी खाना चाहिए।
देवान रसेन मनुष्यांश पित्रेन गृह्याश देवता पूजयित्वा तथा पश्चात गृहस्थ से सभुक् भवेत।
दिव्य गुण संपन्न व्यक्तियों को, विद्वानों को, विद्या के प्रत्यक्ष कर्ता मंत्रार्थ दृष्टा ऋषियों को, साधारण मनुष्यों को, जीवित माता पिता को, आदि पालक व्यक्तियों को तथा ईश्वरीय दिव्य गुणों के चिंतन पूर्वक यज्ञ में आहुति देकर और गृहस्थ द्वारा भरण पोषण की अपेक्षा रखने वाले असहाय अनाथ कुष्ठि भृत्य आदि को भोजन दान द्वारा सत्कृत करके और उनका भाग निकालकर गृहस्थ उसके बाद शेष बचे भोजन को खाने वाला हो, अर्थात उस शेष भोजन को खाया करे।
अघम सकेवलं भुंक्ते यह पचत्यात्मकारणात् यज्ञशिष्टासिनं हेतत् सतामन्नं विधीयसे।
जो व्यक्ति केवल अपना पेट भरने के लिए भोजन पकाता है वह अघम भुंक्ते पाप का भोग करता है, अर्थात इस प्रवृत्ति से स्वार्थ आदि की पापना बढ़कर एतद यह उपर्युक्त यज्ञशिष्ट असन यज्ञों से शेष भोजन को ही सज्जनों का अन्न माना गया है। इसके विपरीत बिना यज्ञ का भोजन असत पुरुषों का भोजन है। 19वें श्लोक में, 119वें श्लोक में भगवान मनु राजाओं के सत्कार के बारे में बताते हैं।
राजर्त्विक्ष्णातक गुरुन प्रियश्वसुरमातुलान अर्हयेन मधुपकरेण परित्संवसरात। पुनः
राजा ऋत्विक यानी पुरोहित, स्नातक गुरु को और मित्र को अथवा दामाद श्वसुर मामा को एक वर्ष के पश्चात आने पर उनका मधुपर्क, दूध दही घी शहद मीठा, इन पांचों प्रकार के मिश्रण से बनाया गया द्रव्य सम्मान के साथ भेंट किया जाता है।
राजा च श्रोतियैश्चैव यज्ञ कर्मण्युपस्थितौ मधुपरकेण संपूज्यो नत्व यज्ञ स्थिति स्थितः।
राजा और वेद पाठी यदि यज्ञ कर्म में आवे तब भी मधुपर्क द्वारा पूजनीय है, यज्ञ से भिन्न समय में मधुपर्क से पूजनीय नहीं है, ऐसी मान्यता है।
सात्यम त्वन्यस्य सिद्धस्य पत्न्यन मंत्रम बलिम हरेत वैश्वदीयम हि नामैतत् सायं प्रातर विधीयसे।
सायंकाल के भोजन के पक जाने पर पत्नी मंत्रोच्चारण किए बिना इस भोजन में से बलि भाग निकाल कर रखे, उसके बाद क्योंकि यह बलि वैश्व नामक यज्ञ सायंग और प्रातः दोनों समय करना विहित है। मृत श्राद्ध का विधान एवं तत्संबंधी नियमों के बारे में भगवान 122वें श्लोक में कहते हैं।
पितृयज्ञम तु निर्वत्य विप्रच्छेदुञ्छेन्मिनां पिण्डान्याहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमाशिकम्।
अग्निहोत्री द्विज को चाहिए कि दैनिक पितृयज्ञ करके प्रतिमास चंद्रमा के क्षीण होने वाले दिन अर्थात अमावस्या को पिंडदान देने के पश्चात जिसमें ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाए उस पर श्राद्ध करें।
पितृणां मासिकं श्राद्धं अन्वाहार्यं विदुर्बुधा तक्षामिशेष कर्तव्यं प्रशस्तेन प्रयत्नतः।
विद्वान लोग पितरों के मासिक श्राद्ध को पिंडान्वाहार्य नामक श्राद्ध कहते हैं और इस श्राद्ध को यत्नपूर्वक उत्तम मांस के द्वारा संपन्न करना चाहिए।
यत्र ते भोजनीयाश्चुर ये च वरजाद्युत्तमाः या वंश्यैव ये चान्यैस्तान् प्रक्षाम्यशेषतः।
उस पितृयज्ञ में श्राद्ध में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवाने चाहिए, जिनका जीवाना वर्जित है, तथा जिन्हें जितने जीवाने चाहिए, जितने प्रकार भोजन जीवाने चाहिए, इन सब बातों को पूर्ण रूप से मैं कहूँगा। अगले श्लोकों में भगवान इनको कहते हुए बताते हैं।
दो दैवे पितृकार्ये त्रीनैकेकमुभयत्रवा भोजये सुसमृद्धोपि न प्रसज्येत विस्तरे।
धनवान व्यक्ति भी देवयज्ञ के उद्देश्य से जिमाने में दो ब्राह्मणों को, पितृयज्ञ में तीन को, अथवा दोनों यज्ञों में केवल एक ही ब्राह्मण को जिमाए, अधिक विस्तार में न पड़े, अर्थात इससे अधिक को जिमाने का यत्न न करे।
सत्क्रियां देशकालौ च शौचौ ब्रह्मण संपदः पंचैतान विस्तरौ हन्ते तस्मान्नेहेत विस्तरम्।
अधिक विस्तार की भावना, सत्कार और देशकाल पवित्रता सपात्र ब्राह्मणों को मिलना, इन पांचों बातों को नष्ट कर देती है। इस कारण विस्तार की इच्छा श्राद्धदाता न करे। अगले श्लोकों में भगवान कहते हैं।
प्रशिता प्रेत्य कृत्येषां पित्रं नाम विदुक्षये तस्मिन् युक्तस्येति नित्यं प्रेतकृत्यैवलौकिकी।
पितृयज्ञ के नाम से प्रसिद्ध यह मरे हुए पिता आदि के संबंध में रखने वाली क्रिया अमावस्या के दिन करने के लिए प्रसिद्ध है। इस क्रिया को सदा करने वाले को लौकिक प्रेतकृत्या प्राप्त होती है, अर्थात पुत्र पौत्र धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है।
श्रोतियायैव देवानि हव्यकव्यानि दातृभिः अहर्त्यमाय विप्राय तस्मै दत्तं महाफलम्।
दाताओं को चाहिए कि वे स्वयोग वेदपाठी ब्राह्मण को ही देवयज्ञ के उद्देश्य से दिए जाने वाले और पितृयज्ञ के उद्देश्य से दिए जाने वाले दान दें, क्योंकि उसको दिया गया दान ही महान पुण्य को देना देता है।
एकैमपि विद्वांसः दैवे पित्रे च भोजयेत् पुष्कलं फलमाप्नोति न मंत्र ज्ञान बहुन्यपि।
देव कर्म और पितृयज्ञ में सुयोग वेद विद्वान को जो एक एक को भी जिमाता है वह बहुत फल को पा लेता है, लेकिन वेदहीन बहुत से ब्राह्मणों को जिमाने पर भी फल नहीं मिलता।
दूरादेव परीक्षेद ब्राह्मणं वेद पारगम तीर्थम तद्धव्य काव्यानाम प्रदानेशो तिथयः स्मृतः।
वेद में पारंग विद्वान ब्राह्मण की श्राद्धदाता दूर से ही अर्थात बुलाने से पहले ही अच्छी प्रकार परीक्षा कर ले और फिर बुलाए, क्योंकि वही तीर्थों के समान पापों से तारने वाला है और हव्य कव्य का दान करने के लिए श्रेष्ठ उसे ही श्रेष्ठ अतीत माना गया है।
द्वहस्त्रम ही सहस्त्राणाम अनृचाम यत्र भुज्यते एकस्तान मंत्र विपरीतः सर्वानर्हति धर्मतः।
जिस श्राद्ध में वेदों को न जानने वाले 10,000 का गुना 1,000 अर्थात 10,00,000 ब्राह्मण भी भोजन करते हैं, उन सबकी तुलना में भोजन आदि से संतुष्ट हुआ एक वेद का विद्वान ब्राह्मण धर्मात्मा होने के कारण अधिक फल दे देता है।
ज्ञानोत्कृष्टाय देयानि कव्यानि च हव्यानि च हवींषि च नहि हस्ता वस्त्रग्दिग्धौ रुधिरेणैव शुद्ध्यतः।
हव्य और कव्य उत्तम ज्ञानी व्यक्ति को ही देने चाहिए, क्योंकि खून से सने हुए हाथ खून से धोने से शुद्ध नहीं होते। मूर्खता में किए गए पापों की शुद्धि मूर्ख व्यक्तियों को जिमाने से नहीं होती, यह तो ज्ञानियों को जिमाने से होती है।
यावतो ग्रसते ग्रासान हव्यक्रव्ये समंत्रवित तावतो ग्रसते प्रेत्य दीप्त्यशूल्यष्टयोगुणान।
वेद का न जानने वाला ब्राह्मण हव्य कव्यों में जितने ग्रास खाता है मरकर श्राद्ध करने वाला उतने ही तपे हुए दुधारे वस्त्रों और लोह के गोलों को खाता है, अर्थात उसे इतने भयंकर कष्ट मिलते हैं। यज्ञनिष्ठा द्विजा चे केचित तपोनिष्ठा तथा परे तपः स्वाध्याय निष्ठाश्च कर्मनिष्ठा तथा परे ज्ञान निष्ठेषु कव्यानि प्रतिष्ठाप्यानि यत्नतः हव्यानि तु यथा न्यायं सर्वस्वेवं चतुर्ष्वपि। कोई ब्राह्मण ज्ञान साधना में तल्लीन रहने वाले हैं और कुछ दूसरी तपस्या में संलग्न रहते हैं, और कुछ तपस्या और वेद के स्वाध्याय में प्रयत्नशील रहने वाले हैं, तथा कुछ यज्ञादि कर्मों में लगे रहने वाले हैं। इस प्रकार ये चार प्रकार के ब्राह्मण हैं। श्राद्ध संबंधी दान सत्कार यत्नपूर्वक ज्ञानी ब्राह्मणों को ही देने चाहिए, और देवकर्म संबंधी दान सत्कार चारों प्रकार के ब्राह्मणों को यथा योग्यता के अनुसार देने चाहिए। अश्रु श्रियो पितायस्य पुत्रः से स्याद् वेदपारगः, अश्रु श्रियो वा पुत्रः स्याद् पिता स्याद् वेदपारगः, ज्यायां समनयोर् विद्याद् द्यस्य स्याच्छो स्त्रियः पिता, मन्त्रपु संपूजनार्थं तु सत्कारमितिरोरहति। जिसका पिता वेद का विद्वान न हो और पुत्र वेद का विद्वान हो, अथवा पुत्र वेद का विद्वान न हो तथा उसका पिता वेद का विद्वान हो, इनमें जिसका पिता वेद का विद्वान हो उसे बड़ा समझना चाहिए। किंतु वेद मंत्रों के पूजन के लिए दूसरा विद्वान न हो तो भी दूसरा ही सत्कार पाने योग्य है। न श्राद्धे भोजयेन मित्रं धनै कार्योस्य संग्रहं, नारीं च मित्रं यं विद्याशं श्राद्धे भोजे द्विजम्। मित्र ब्राह्मण को श्राद्ध में न जीवावे, ऐसे मित्र का तो केवल धन देकर ही आदर सत्कार करना चाहिए। जिसे न तो शत्रु समझे न मित्र समझे उसे ब्राह्मण उस ब्राह्मण को श्राद्ध में जीवावे। यस्य मित्र प्रधानानि श्राद्धानि च हविंसि च तस्य प्रेत्य फलम नास्ति श्राद्धेषु च हविष्षु च। जिस व्यक्ति के यहाँ कव्य और हव्य अर्थात श्राद्ध दान और देव यज्ञ के उद्देश्य से जाने वाले किए जाने वाले दान मित्रों को उद्दिष्ट करके दिए जाते हैं, उस श्राद्ध कव्यों और हव्यों का परलोक में फल नहीं मिलता। यह संगतानि कुरवेत मो कुरुते मोहच्छाद्देन मानवः स स्वर्गाक्षवते लोकाक्षाद्रमित्तो द्विजाधमः। जो मनुष्य मोह भावना में आकर श्राद्ध के द्वारा मित्रों को प्रसन्न करता है या श्राद्ध में मित्रों को जीवाकर अपनी मित्रता को सुदृढ़ करता है, वह द्विजों में नीच श्राद्ध मित्रता बनाने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक के अधिकार से पतित हो जाता है। संभोजनी सा विहिता पैशाची दक्षिणा दुजई इही वास्ते तु सालोके गौरंधीर वै कवीश्वनी। विद्वानों ने मित्रों को भोजन और दान रूप में दी जाने वाली उस दक्षिणा को पिशाचों द्वारा दी जाने वाली क्रिया कहा है। जैसे अंधी गाय एक घर में ही पड़ी रहती है, कहीं इधर उधर नहीं जा सकती, ऐसे ही वह दान क्रिया इसी लोक में रह जाती है अर्थात परलोक में जाकर शुभ फल नहीं देती। यथे ऋणे बीज मुक्ता न वप्ता लभते फलम तथा नचे हविर दत्वा न दाता लभते फलम। जैसे बंजर भूमि में बीज बोकर बीज बोने वाला उसके उत्पत्ति रूप फल को प्राप्त नहीं करता, वैसे ही वेद के अविद्वान को हव्य कव्य देकर दानी व्यक्ति कोई फल नहीं प्राप्त करता। दात्रेन प्रतिगृहीतांश कुरुते फलभागिनः विदुषे दक्षिणां दत्वा विधिवत् प्रेत्यचेह च। दाता व्यक्ति विधि पूर्वक विद्वान व्यक्ति को दक्षिणा देकर दान देने वाले और दान लेने वालों दोनों को परलोक में और इस लोक में दोनों ही जगह फल का भागी बनाता है।
कामं श्राद्धेर चयेन मित्रं नाभिरूपमपि त्वरिं द्विषता हि हविर्भुङ्क्तं भवति प्रेत्य निष्फलम्।
श्राद्ध में मित्र से भिन्न कोई सुयोग्य व्यक्ति न मिलने पर चाहे श्राद्ध में मित्र का ही श्राद्ध दान से सत्कार कर दे किंतु शत्रु विद्वान भी हो तो उसको न जीवावे, क्योंकि शत्रु के द्वारा खाया गया श्राद्ध परलोक में फल रहित ही रहता है।
यन्नेन भोजये श्राद्धे ब्रह्मचं वेदपारगम शाखान्त मथामृद्धुम छंदोगम तुषमाप्तिकम्।
श्राद्ध में जो बहुत ऋचाओं मंत्रों का ज्ञाता हो उसे ही, जो वेद में पारंगत हो, जो वेद की शाखाओं ब्राह्मण उपनिषदों का ज्ञाता हो, अथवा यज्ञों का ऋत्विज हो, जिसने वेदों को आद्यंत पढ़ा हो, ऐसे ब्राह्मणों को यत्नपूर्वक खिलाना चाहिए।
ईशा मन्य तमो यस्य भुंजीत श्राद्ध्यमर्चितः पितृणां तस्य तृप्तिः स्यात् शाश्वती शाप्त पौरुखी।
इनमें से कोई एक भी ब्राह्मण पूजित होकर जिसके श्राद्ध को खाता है, उस श्राद्ध देने वाले के पितरों की 7 पीढ़ी तक निरंतर तृप्ति होती है।
एष वै प्रथमः कल्पः प्रदाने हव्यकव्यादयो अनुकल्पत्स्त्वयं गेयः सदा सद्भिरनुष्ठितः।
हव्यकव्य देने में यह ऊपर वर्णित विधान प्रथम कोट के ब्राह्मणों द्वारा मान्य है। सदा श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा किया जाने वाला द्वितीय कोटि का श्राद्ध संबंधी विधान निम्न है।
मातामहं मातुलं च स्वस्त्रियं स्वसुरं गृहं दौहित्रं विटपतिं बन्धुं मित्रयाजौ च भोजयेत्।
नाना को, मामा को, भांजे को, स्वसुर को, गुरु को, देवते को, दामाद को, बंधु बांधवों को और ऋत्विग तथा यज्ञकर्ता को भी श्राद्ध में भोजन खिला सकते हैं, खिलाते हैं।
न ब्राह्मणं परिच्छेद दैवे कर्मणि धर्मवित पितृ कर्मणि तु प्राप्ते परिच्छेद प्रयत्नतः।
धर्म की मर्यादा को जानने वाला गृहस्थ व्यक्ति दैव कर्म के उद्देश्य से किए जाने वाले दान आदि कार्यों में ब्राह्मण की योग्यताओं की विशेष परीक्षा न करे किंतु सावधानी पूर्वक परीक्षा करे। श्राद्ध में अपांगते ब्राह्मणों के बारे में भगवान कहते हैं,
ये स्ते न पतित क्लीबा ये च नास्तिक वृत्तयः तान हव्य कव्यायोर विप्रान अहरहान मनुरब्रवीत।
जो चोर पतित नपुंसक है, जो नास्तिक स्वभाव वाले हैं, इन ब्राह्मणों को हव्य कव्य देने के लिए मनु ने अयोग्य कहा है।
जटिलं चानधीयानं दुर्बलं किवितं तथा याजयन्ति चये पुंगास्तांश श्राद्धे न भोजयेत्।
अध्ययन से रहित ब्रह्मचारी को, अर्थात वेशभूषा आदि से ब्रह्मचारी बना हो किंतु पढ़ता न हो, किसी रोग के कारण छीण बल वाले तथा जुवारी को, और जो बहुत सारे लोगों की यज्ञ कराते हों, उन्हें श्राद्ध में नहीं खिलाना चाहिए।
चिकित्सकान देवा देवल देवलकान मांस विक्रयणिस्तथा विपणेन च जीवन्तो वरजा सस्पृहव्य कव्यो।
वैद्यों को, पुजारियों को, मांस बेचने वाले को और व्यापार करके जीविका करते हों, इनको हव्य कव्य नहीं देना चाहिए।
प्रेष्यो ग्रामस्य राजस्य कुनस्त्रीश्यावदन्तकः प्रतिरोधा गुरुश्चैव त्यक्ताग्निर्वार्धुषिस्तथा।
गांव का और राजा का नौकर, बिगड़े नाखूनों वाला, काले दांत वाला और गुरु का विरोध करने वाला, जिसने पंचाज्ञान अग्नियों का त्याग कर दिया है, तथा ब्याजखोर, ये श्राद्ध में जीवाने के लिए वर्जित हैं।
यक्ष्मी च पशुपाल्यस्य परिवेता निराकृति ब्रह्मवित् परिवित्तस्य गणाभ्यंतर एव च।
तपेदिक का रोगी, पशुओं का पालन करने वाला, पालन करके जीविका चलाने वाला, बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए पूर्व विवाह करने वाला, देवताओं या यज्ञादि शुभ कार्यों का खंडन करने वाला, ब्राह्मणों तथा वेदों का द्वेषी, छोटे भाई के विवाह कर लेने पर अविवाहित बचा बड़ा भाई, और किसी धर्म विरुद्ध समुदाय का सदस्य, इन्हें भी श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। कुशीलवो वड़कीर्णो च व्रशलीतिरेव च पौनर्भवश्च काणश्च यस्य चोपपतिर्गृही। नाचने गाने वाला व्यभिचारी और इस शूद्रा स्त्री का पति, किसी स्त्री के दूसरे पति से उत्पन्न पुत्र, तथा जिसके जिस घर की स्त्री का जार रहता हो, इन्हें भी श्राद्ध नहीं खिलाना चाहिए। भूतकाध्यापको यश्च भूतकाध्यापितस्तथा शूद्र शिष्यो गुरुश्चैव वाग्दुष्टः कुण्डगोलकौ। जो वेतन लेकर पढ़ाता हो तथा जो वेतन लेने वालों से पढ़ा हो, शूद्र का शिष्य और शूद्र का गुरु, दुष्ट वाणी बोलने वाला, असली पिता के होते हुए भी जो जार से उत्पन्न हुआ हो, जो असली बाप की मृत्यु के पश्चात जार से पैदा हुआ हो, ये भी श्राद्ध में नहीं खिलाने चाहिए। अकारण परित्यक्त्वा मात्रा पित्रोर्गुरुस्तथा ब्रह्मयोनैश्च संबंधैः संयोगं पतितैर्गतः। माता पिता और गुरु को बिना कारण छोड़ देने वाला और पतित व्यक्तियों के साथ पठन पाठन संबंधी तथा विवाह संबंधी संबंध स्थापित करने वाला, ये साध्य में नहीं खिलाना चाहिए। आगरदाही गरदाह कुंडाशी सोम विक्रयी समुद्राई वंदी च तैलिका कूटकारकः। घरों में आग लगाने वाला, गरदाह विष देने वाला, कुंडांसी कुंदन नाम का संतान के साथ खाने पीने वाला, सोम विक्रयी सोम औषधि का व्यापार करने वाला, समुद्रयाई समुद्र की यात्रा करके परदेश जाने वाला, और बंदी खुशामद के गीत गाकर जीविका चलाने वाला, चारण भाण आदि तैलिक तेली कूटकारक झूठी गवाही देने वाला, ये श्राद्ध में नहीं खिलाने चाहिए। पित्रा विवदमानश्च कितवो मद्यपस्तथा पापरोग्यभिषस्तैश्च जदंभिको रसविक्रमी। और पिता के साथ झगड़ा करने वाला, कितवः धूर्त मद्यपः शराब पीने वाला, पापरोगी पाप से हुए कुष्ठादि रोगों वाला, और अभिशप्तः श्राप से ग्रस्त तथा कलंकी दाम्भिका पाखंडी रसविक्रयी रसों को बेचने वाला, ये सभी श्राद्ध में वर्जित हैं। धनुष्राणाम कर्ताम च यस्य चाग्रे धृतुष्पतिः मित्रद्रुग्धृत वृत्तिश्च पुत्राचार्यस्तथैव च। और धनु और बाणों को बनाने वाला तथा अग्रे दधि शूर पातः बड़े भाई की स्त्री को काम वासना के वशीभूत होकर पत्नी बनाने वाला व्यक्ति, मित्र से धोखा करने वाला, मित्र ध्रग धूत वृत्ति जुआरी, और पुत्राचार्य अपने पुत्र को आचार्य गुरु बनाकर पढ़ने वाला, ये सभी श्राद्ध में नहीं खिलाने चाहिए। भ्रामरी गंडमाली च सुबध्याथोपि संस्तथा उत्तमो उन्मत्तो द्यश्च वरजास्युर वेद निंदकैव च। भ्रामरी अर्थात मृगी रोगी, गंडशाली गंडमाला का रोगी, स्वस्त्री श्वेत कुष्ठ का रोगी, अथ और पिशुना चुगुलखोर उन्मत्ता पागल तथा अंधा वेद निंदक, ये सभी श्राद्ध में वर्जित हैं। हस्तिगोष्योष्टको दमनो दमको नक्षत्रैर्यश्च जीविकः पक्षिणां पोषको यश्च युद्धाचार्यस्तथैव च। जो हाथी बैल घोड़ा ऊंट आदि को सिखाने वाला हो, जो नक्षत्र राशि आदि बताकर जीविका करता हो और जो पक्षियों को पालने वाला हो, ये सभी, और युद्धाचार्य युद्ध विद्या सिखाने वाला हो, ये श्राद्ध में जीवाने के लिए वर्जित हैं। श्रोतसाम वेद का वेद को यश तेषाम चावरणे रतः गृहे संवेशको दूतो वृक्षारोपक एव च। और जो झरनों को तोड़ने वाला हो तथा उन्हें रोकने वाला हो, घर बनाकर जीविका चलाने वाला हो, दूत का काम करता हो और पेड़ पौधों को लगाने वाला हो, ये सभी श्राद्ध में वर्जित हैं। स्वक्रिय देशे न जीवी च कन्या दूषक च हिस्रो वृषल वृत्तिश्च गणानाम चैव याजकः। कुत्तों को पालने वाला, शेनजीवी बाज पक्षी के से जीविका चलाने वाला, कन्या दूषक कन्या के साथ बलात्कार करने वाला, हिंसा हत्यारा, वृषलह वृत्ति शूद्र की नौकरी करने वाला, गणानाम चैव याजक अनेक समुदायों के यज्ञ करने कराने वाला, ये सभी श्राद्ध में वर्जित हैं। आचारहीन क्लीबश नित्यम याचनकस्तथा कृषिजीवी श्लीपदी सदभिर्निंदिता निंदित एव च। आचार से पतित, क्लीबह नपुंसक और प्रतिदिन मांग कर खाने वाला, कृषिजीवी खेती कर जीविका चलाने वाला, श्लीपदी मोटे पांव, हाथी पांव की बीमारी वाला और सद्वीर निंदिता एव सज्जनों द्वारा निंदित, ये सभी श्राद्ध में वर्जित हैं। औरभ्रिको हाँ माहिषिका परपूर्वापतिस्तथा प्रेत निर्यातकश्चैव वर्जनीया प्रयत्नतः। औरभ्रिकः भेड़ बकरी को पालकर जीविका चलाने वाला, माहिषिका भैंस को से जीविका चलाने वाला, परपूर्वापति विधवापति स्त्री का पति, अन्य से विवाहित स्त्री से उसके बाद होने वाला पति, और प्रेत निर्यातक मुर्दों को ढोने वाला, प्रयत्नतः वर्जनीया इन्हें श्राद्ध में यत्नपूर्वक छोड़ देना चाहिए। एतान विगरहिता आचारान पांगत अपांगते यान द्विजाधमान द्विजाति प्रवरो विद्यानुभयत्र विवर्जयेन। इन ऊपर वर्णित निंदनीय आचरण वाले आपंक्तेयान श्राद्ध की पंक्ति में बैठने के अयोग्य द्विजाधमान नीच ब्राह्मणों को, द्विजाति प्रवरह विद्वान द्विजातियों में श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति, उभयत्र दोनों स्थानों पर अर्थात देवकर्म और पितृकर्म में विवर्जयेत माने छोड़ देवे। ब्राह्मणस्त्वन्नधीनान स्त्रष्णाग्निरवरिव शाम्यति तस्मै हव्यम न दातव्यम न हि भूष्मनि दूयति। बिना पढ़ा लिखा ब्राह्मण हुआ हो तो तिनको की तरह, आग की तरह जो शीघ्र ही बुझ जाती है, उसको हव्यादि दान भाग नहीं देना चाहिए, क्योंकि भस्मनि हूयति राख से कभी आहुति नहीं दी जाती। अभिप्राय यह है, जैसे राख में आहुति देना निरर्थक है, वैसे ही राख के समान ब्राह्मणत्व रूपी तेज से हीन ब्राह्मण को दान देना निष्फल हो जाता है। अपांगत दाने यो वस्तुर भवत्पूर्वं फलोदयः देवं देवे हविषि पितृवा तत्प्रवक्षाम्यसे सतः। देवकर्म यज्ञ कर्म अथवा पितृयज्ञ कर्म में पंक्ति में बैठने के योग्य ब्राह्मणों को हव्य कव्य देने से दाता जो परलोक में फल मिलता है, उसे संपूर्ण रूप से कहता हूँ। अपांगते ब्राह्मणों को दान देने से फल की अप्राप्ति। अवृतैर यद दुजैर्भुक्तम परिवेत्तदाभिस्तथा आपंक्तेयैर यदन्यैश्च तरधम रक्षांसि भुञ्जति। अवृतैर यद दुजैर्भुक्तम परिवेत्तादिभिस्तथा अपांक्तेयैर यदस्तैन्यश्च तद्वै रक्षांसि भुञ्जति। अवृतैः व्रतों के के पालन से रहित, ब्रह्मचर्य आदि व्रत से रहित तथा परिवेता आदि भी तथा परिवेत्या संगत आदि द्वारा और अन्य अपांगतेय भुंगतम जो दूसरे पंक्ति में बैठने के अयोग्य ब्राह्मण है उनके द्वारा खाए गए अन्न को निश्चय से उसे राक्षस खाते हैं अर्थात वह निष्फल रहता है। दाराग्निहोत्र संयोगम कुरुते योग्रजे स्थितम परिवेत्यास विज्ञेयः परिवितस्तु पूर्वजः। जो व्यक्ति बड़े भाई के रहते हुए उससे पहले विवाह और गृहस्थ के पंचमे यज्ञ आदि को करता है उसे परिवेत्ता कहा जाता है और उसका वह बड़ा भाई परिवृत्ति कहा जाता है। परिवेत्ति परिवेता यजा च परिवेद्यते सर्वेते नरकं यान्ति दात्रयाजक पंचमा। परिवित्ति परिवेत्ता और जिस कन्या से विवाह करता है वह कन्या को ब्याहने वाला और विवाह यज्ञ कराने वाला ये पांचों सबके सब नरक में जाते हैं। भ्रातुरमृत्यस्य भार्यायां यो तनुरज्यते रज्येत कामतः धर्मेणापि नियुक्तायां सज्ञेयो विदुषोपतिः। मरे हुए भाई की पत्नी से जो काम वासना के वशीभूत होकर संयोग करता है चाहे नियोग धर्म के अनुसार नियुक्त होकर यदि वह संतानोत्पत्ति के बिना काम के वशीभूत होकर संयोग करता है उसे दिध शूपति कहा जाता है। परदारेषु जायेत दोषुतौ कुंडगोलकौ पत्यौ जीवत कुंडः स्यान् मते भरत रिगोलका। पराई स्त्री से कुंड और गोलक ये दो प्रकार के उत्पन्न पुत्र उत्पन्न होते हैं। पति के जीते हुए जो दूसरे पति से संतान उत्पन्न होती उसे कुंड संज्ञक कहलाती है। पति के मरने पर दूसरे पति से उत्पन्न संतान गोलक कहलाती है। ततौ तु जतौ परिक्षेत्रे प्राणिनौ प्रेत्य चेह च दत्तानि हव्यकव्यानि नाशयेत प्रदायिनाम्। प्राय स्त्री से उत्पन्न हुए वे दोनों प्राणी अर्थात कुंड और गोलक दाताओं के द्वारा दिए गए हव्य कव्यों को परलोक और इसलोक दोनों में ही स्थानों पर नष्ट कर देते हैं अतः उन्हें हव्य कव्य नहीं देना चाहिए। अपांगतयो यावतः पांगत्यान् भुञ्जानानुपश्यति तावताम् न फलम् यत्र दाता प्राप्नोति बालिशः। पंक्ति में बैठने के योग्य व्यक्ति जितने भी पंक्ति में बैठने के सुपात्र ब्राह्मणों को खाते हुए देख लेता है वहाँ मूर्खदाता उतने ही खाने वालों का फल प्राप्त नहीं कर पाता। वीक्षायन्तः नवते काणः सृष्टे द्वित्रिशतस्य तु पापरोगे सहस्रासि दादरनाशे तत्फलम्। श्राद्ध में भोजन करते हुए ब्राह्मणों को देखकर अंधा नवते अंधा नब्बे के काणः षष्ठे काणः साठ के तु और स्वस्त्री सतस्य श्वेत कुष्ठी सौ के पाप रोगी सहस्रस्य कुष्ठ और पापों से होने वाले रोगों को रोगी हजार ब्राह्मणों के जिमाने वाले दाता के फल को नष्ट कर देता है। यावतः संस्पृते दंगैर ब्राह्मण्यशूद्रयाजकः तावताम् न भवेद् दातुः फलम् दानस्य पौर्तिकम्। शूद्रों को यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण जिसने ब्राह्मणों को यावत ब्राह्मणान जितने ब्राह्मणों को अंगैः संस्पृशेत अंगों से छूता है दातुः दाता को तावताम दानस्य पौर्वतिकम फलम न भवेत् उस ब्राह्मण को दान का शुभ फल नहीं प्राप्त होता। वेद विच्चापि विप्रोस्य लोभात् कृत्वा प्रतिग्रहिं विनाशं व्रजति क्षिप्र माम पात्रमिवाम्भसी। वेद का ज्ञाता विद्वान भी इस शूद्र याजक लोभ के कारण दान लेकर अम्भसी आम पत्रमिव जैसे जल में मिट्टी का कच्चा घड़ा गल जाता है ऐसे शीघ्र ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। सोम विक्रयणे विष्टा विषजे पूय शोषिणम नष्टम देव कले दत्तम अपृष्ठम तो असुर वार्धुषौ। सोम बेचने वाले को दिया गया दान विष्टा के तुल्य हो जाता है। वैद्य को दिया गया दान मवाद और खून के समान होता है। पुजारी को दिया गया दान निष्फल हो जाता है और व्याजखोर को दिया गया दान व्यर्थ हो जाता है। यत्रुवाणिज के दत्तम नेह नामुत्र तद भवेत भस्मनी बहुतम हव्यम तथा पौर्य भवेत द्विजः। व्यापार करने वाले ब्राह्मण को दिया गया दान न इस लोक में फलदायक होता और न परलोक में, वैसे ही दूसरा पति रखने वाली स्त्री से उत्पन्न ब्राह्मण को दिया गया दान राख में डाली गई आहुति के समान निष्फल है। इतरेषु तंतपांक्तयेषु यथोदिष्टेषु साधुषु मेदोस्त्रंगमांसमज्जादि वदन्त्यन्यं मनीषिणः। दूसरे पंक्ति में बैठने के अयोग्य व्यक्तियों और जो जो निकृष्ट ब्राह्मण गिना आए हैं उनको दिए गए श्राद्ध के अन्न को मनीषी लोक मेदा लहू मांस चर्बी और हड्डी के समान कहते हैं, अर्थात वह अन्न खाने के समान है, अतः उन्हें अन्न नहीं खिलाना चाहिए। पांक्तेय ब्राह्मणों के बारे में बताते हैं कि किनको अपांक्तयोपहतः पंक्तिः पाव्यते ऐर्द्विजोत्तमैः तान्निबोधते कांश्नेय द्विजाग्रयान् पंक्तिवान् पावनान्। पंक्ति में न बैठने योग्य लोगों से दूषित की हुई पंक्ति जिन श्रेष्ठ व्यक्तियों के पवित्र से पवित्र हो जाती है, उन पंक्ति को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कार्तनीय अनुभूयते, पूर्ण रूप से जानो। अग्रा सर्वेषु वेदेषु सर्व प्रवचनेषु च श्रोत्रियान् यज्ञांश्चैव विज्ञेया पंक्ति पावनः। जो सब वेदों और सबके प्रवचन करने में अथवा वेदांगों में पारंगत तथा वेद पाठियों के वंश में जन्म लेने वाले ब्राह्मण पंक्ति को पवित्र करने वाले समझने चाहिए। ऋचाचिकेतः पञ्चाग्निः ऋचाग्निचेतः पञ्चानि ब्रह्मादेयात्मसंतयो ज्येष्ठसामंग एव च। त्रिणाचिकेतः पञ्चाग्निस्त्रिषुपर्णः षडङ्गवित् ब्रह्मदेयात्मसंतानो ज्येष्ठसामग एव च। वेदार्थवित् प्रवक्ताय च ब्रह्मचारी सहस्रदः सतायुतश्चैव विज्ञेया ब्राह्मणा पंक्ति पावनः। उद्धर्य वेद के भाग को पढ़ने वाला, उसका व्रत करने वाले, पंच महायज्ञों को करने वाले, वरह व्रच वेद भाग पढ़ने वाले, उनका व्रत करने वाले, वेद के छह अंगों को जानने वाला, ब्रह्म विवाह की विधि से विवाहित व्यक्तियों की संतान और वेदों के अर्थ का ज्ञाता और वेदियों का व्याख्यान करने वाला, ब्रह्मचारी, हजार गौओं का दानी, 100 वर्ष की आयु वाला, इन ब्राह्मणों को पंक्ति को पवित्र करने वाला जानना चाहिए।